लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और भीषण बाढ़ की चपेट में आए पीड़ितों तक मानवीय राहत पहुंचाने के लिए दुबई से विशाल स्तर पर हवाई अभियान शुरू किया है और सड़क मार्ग से भी राहत सामग्री की खेप रवाना की गई है। इसके जरिए दक्षिणी सिंध प्रांत के सर्वाधिक प्रभावित लरकाना और सुकूर स्थानों में विस्थापित अति आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 3,30,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए, 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और व्यापक पैमाने पर तबाही हुई है। बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं पर भीषण असर हुआ है। मौजूदा हालात में राहत एजेंसियों ने जल जनित और घातक बीमारियों के फैलने के प्रति भी आशंका व्यक्त की है। इन चुनौतियों के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बाढ़ पीड़ितों और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं और 16 करोड़ डॉलर की एक सहायता अपील जारी की गई है। दुनिया भर में महामारी से लगभग 2.5 वर्षों में कोविड-19 के लगभग चीन के तथाकथित शिजियांग उवीगर स्वायत्त क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां उवीगर और अन्य मुख्यतः मुस्लिम समुदायों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन हुए हैं। ये रिपोर्ट यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बासलेट की मई 2022 की चीन यात्रा के संदर्भ में बुधवार 31 अगस्त को प्रकाशित की गई है, जो कि पद पर 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का अंतिम दिन भी था। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार उत्पीड़न या दुर्व्यवहार किए जाने, जिसमें जबरन चिकित्सा उपचार किया जाना भी शामिल है, और बंदीकरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के आरोप ठोस हैं, और साथ ही यौन व लिंग आधारित हिंसा की व्यक्तिगत घटनाओं के आरोप भी सही हैं। रिपोर्ट के अंत में कड़े शब्दों वाले आकलन में कहा गया है कि उवीगर और अन्य लोगों के विरुद्ध मनमाने तरीके से बंदी बनाए जाने के मामले, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से आनंद लिए जाने वाले बुनियादी अधिकारों पर प्रतिबंधों व उनसे वंचित किए जाने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अपराध कहे जा सकते हैं, विशेष रूप से मानवता के विरुद्ध अपराध। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने इस रिपोर्ट के संदर्भ में गुरुवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्वतंत्रता की महत्ता को रेखांकित किया है। प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक कह रहे थे कि यूएन महासचिव ने ये रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की स्पष्ट पहचान की गई है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की ये रिपोर्ट इसकी भी पुष्टि करती है, जो यूएन महासचिव काफी समय से शिनजियांग पर कहते रहे हैं कि मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा और उइगर समुदाय का सम्मान भी किया जाना होगा, ताकि वो ये महसूस कर सकें कि वो भी बिना किसी भेदभाव के देश का हिस्सा हैं। चीन सरकार ने भी यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की ये कड़ी रिपोर्ट प्रकाशित होने के साथ ही अपनी काफी लंबी और विस्तृत प्रतिक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें निष्कर्ष तय कहा गया है कि शिनजियांग क्षेत्र में अधिकारी इस सिद्धांत के साथ अपना काम करते हैं कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, और ये आरोप कि सरकार की नीति भेदभाव पर आधारित है बिल्कुल निराधार है।
दुनिया भर में महामारी से लगभग 2.5 वर्षों में कोविड-19 के लगभग 60 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल कोविड-19 से होने वाली मौतों में अलबत्ता कमी आई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के आगमन के साथ ही कोविड मामलों की संख्या बढ़ सकती है। यूरोप में WHO कार्यालय के निदेशक डॉ हैंस क्लूज ने कहा कि यूरोप में कुछ ही हफ्तों में कोविड के संक्रमण मामलों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने भी सर्दी के दौरान मामलों में उछाल की आशंका जताई है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
दुनिया भर में कोविड-19 से होने वाली मौतों में अलबत्ता कमी आई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उत्तर गोलार्ध में सर्दियों के आगमन के साथ ही कोविड मामलों की संख्या बढ़ सकती है। WHO प्रमुख ने जिनीवा में अपनी नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अब हम दर्ज हुई मौतों में विश्व स्तर पर एक स्वागत योग्य गिरावट देख रहे हैं। टेड्रोस एडनाम गेब्रेसिस ने हर जगह लोगों के बीच संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए लोगों को टीका लगे होने के बावजूद कार्रवाई जारी रखने की याद दिलाई। उपायों में विशेष रूप से घर के अंदर भीड़ इकट्ठी करने से बचना और मास्क पहनना आदि शामिल है। उन्होंने कहा,
लिविंग विद कोविड-19 डजंट मीन प्रिटेंडिंग द पेंडेमिक इज ओवर।
कोविड-19 के साथ जीने का मतलब ये नहीं है कि हम आंख मूंद कर ये मान लें कि महामारी खत्म हो गई है। यदि आप बिना छतरी के बारिश में घूमने जाते हैं तो केवल ये सोचने से कि बारिश हो ही नहीं रही है आपकी मदद नहीं होगी, आप फिर भी भीग तो जाएंगे ही। इसी तरह ये दिखावा करना कि ये घातक वायरस फैला हुआ नहीं है एक बहुत बड़ा जोखिम है।
डॉक्टर टेड्रोस के शब्द।
माली में सेवारत बुर्किना फासो की एक शांति रक्षक को प्रशासनिक अधिकारियों और स्थायी समुदायों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। इनमें लिंग आधारित हिंसा के पीड़ित भी हैं। मुखिया वारंट अधिकारी अलिजेता काबोरे किंडा को 2022 संयुक्त राष्ट्र महिला पुलिस अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा सोमवार को की गई और उन्हें ये पुरस्कार बुधवार को दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी पुरस्कार की स्थापना 2011 में की गई थी। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिला पुलिस अधिकारियों के असाधारण योगदान को सम्मानित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बुर्किना फासो की मुख्य वारंट अधिकारी अलिजेता काबोरे किंडा माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ लैंगिक मामलों के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान बुधवार को मुख्य वारंट अधिकारी किंडा को पुरस्कृत किया गया।
Je suis heureuse et fière de me tenir devant vous.
अलिजेता काबोरे किंडा पुरस्कार ग्रहण करने के बाद फ्रेंच भाषा में कह रही थी कि इस अभूतपूर्व अवार्ड को पाने के बाद वो गर्वित और प्रसन्न महसूस कर रही हैं। उन्हें खुशी है कि UN मिशन में उनके प्रयासों को पहचान मिली है। UN शांति रक्षक लैंगिक बाल संरक्षण, मानवाधिकारों और नागरिक सुरक्षा जैसे मामलों को समझने और उनमें सुधार लाने के लिए माली के मिनाका क्षेत्र में सुरक्षा बलों को समर्थन प्रदान करती हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्राण
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर संत पापा फ्रांसिस ने सम्राट चार्ल्स तृतीय और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा राष्ट्र और राष्ट्रमंडल की भलाई के लिए महारानी की अनुपम सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन गुरुवार दोपहर को स्कॉटलैंड स्थित उनके आवास बालमोराल कासल में हो गया था। ब्रिटेन पर 70 साल तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी थी। महारानी एलिजाबेथ ने विगत 2 जून को अपनी प्लैटिनम जुबली मनाई थी। दिवंगत महारानी के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स वेल्स के पूर्व राजकुमार अब 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के लिए राजा और ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के कुछ ही समय बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महारानी तथा वेल्स के पूर्व राजकुमार की मां वर्तमान किंग चार्ल्स तृतीय को एक तार संदेश भेजा। संत पापा ने लिखा, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं महामहिम शाही परिवार के सदस्यों, यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। संत पापा ने कहा कि वे हर उस व्यक्ति के शोक में शामिल हैं जो महारानी के निधन पर शोक मना रहा है। दिवंगत महारानी की चिर शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। राष्ट्र और राष्ट्रमंडल की भलाई के लिए, उनके निरंतर सेवामय जीवन के लिए, कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण के लिए, अन्यों के प्रति उनके उदाहरण के लिए और यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास के साथ वादों में उनकी दृढ़ आशा के लिए मैं प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किंग चार्ल्स तृतीय को संबोधित शब्दों में संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मैं महामहिम को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूं ताकि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको अपनी असीम कृपा में बनाए रखें तथा आप राजा के रूप में अपनी उच्च जिम्मेदारियों को निभा सकें। 70 वर्षीय शासन काल के दौरान महारानी एलिजाबेथ ने कई बार वेटिकन की भेंट कर कलीसिया के विभिन्न परमाध्यक्षों के साथ मुलाकातें की थी। सन 1952 में अपने शासन काल की शुरुआत करने वाली महारानी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल सन 1926 को हुआ था तथा 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बालमोराल प्रासाद में उनका निधन हो गया। 5 मई सन 1961 को महारानी एलिजाबेथ संत पापा जॉन 23वें से मिली थीं। हालांकि इससे पूर्व सन 1951 में राजकुमारी एलिजाबेथ के रूप में वे वेटिकन की भेंट कर चुकी थीं, जब संत पापा पियूस 12वें सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष थे। सन 1980 में महारानी एलिजाबेथ ने वेटिकन की राजकीय यात्रा कर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय से औपचारिक मुलाकात की थी। इस अवसर पर रोम और वेटिकन में हजारों दर्शकों द्वारा उनका स्वागत किया गया था। महारानी की वेटिकन भेंट के 2 वर्षों बाद यानी कि 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन की प्रेरित की यात्रा की थी। 28 मई 1982 को महारानी एलिजाबेथ तथा संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के बीच औपचारिक मुलाकात सम्पन्न हुई थी। नवीन सहस्राब्दी के आरंभ के उपलक्ष्य में अक्टूबर सन 2000 में एक बार फिर महारानी एलिजाबेथ ने वेटिकन की यात्रा कर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का साक्षात्कार किया था। सितंबर 2010 में कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमन की धन्य घोषणा के उपलक्ष्य में तत्कालीन संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने ग्रेट ब्रिटेन की प्रेरित की यात्रा कर एडिनबर्ग की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात की थी। सन 2014 में यूनाइटेड किंगडम और परम धर्म पीठ के बीच कूटनैतिक संबंधों की पुनर्स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति एडिनबर्ग के सामंत राजकुमार फिलिप ने रोम और वेटिकन की भेंट की थी। महारानी एलिजाबेथ तथा संत पापा फ्रांसिस के बीच औपचारिक मुलाकात 3 अप्रैल 2014 को संपन्न हुई थी। न्यूयॉर्क में युवाओं के लिए आरंभ क्रिस्तीय एकतावर्धक समुदाय के उद्घाटन पर संत पापा फ्रांसिस ने एक संदेश भेजा है। क्रिस्तीय एकतावर्धक समुदाय का शुभारंभ न्यूयॉर्क शहर के सेंट जॉन डिवाइन महागिरजाघर के तत्वाधान में हुआ। गुरुवार को महागिरजाघर में एक विशिष्ट सांध वंदना के साथ द न्यू कम्युनिटी एट द क्रॉसिंग शीर्षक के अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। द कम्युनिटी एट द क्रॉसिंग किसी भी क्रिस्तीय संप्रदाय के अमरीकी युवाओं के लिए अध्ययन, प्रार्थना, निर्धनों और जरूरतमंदों की सेवा तथा सामुदायिक जीवन संबंधी एक वर्षीय कार्यक्रम है। गुरुवार को उक्त एकतावर्धक कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस का वीडियो संदेश प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा सांध वंदना के अवसर पर युवा प्रतिभागियों ने एंग्लिकन कलीसिया के धर्माधिपति महाधर्माधीश जस्टिन वेल्बी और कॉन्स्टेंटिनोपल के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्रादि धर्माधीश बार्थोलोम प्रथम के संदेश भी सुने। अपने वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने ख्रिस्ती युवा प्रतिनिधियों से कहा कि वे उक्त कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभिक ख्रिस्तानुयायियों के सदृश ईश्वर के प्रेम और उनकी कोमलता के साक्षी होंगे। संत पापा ने उन्हें स्मरण दिलाया कि जो लोग प्रारंभिक ईसाई समुदायों को देखते थे, वे उनके बारे में कहते थे, देखो वे एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं, और उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की कि यह यहां संत जॉन द डिवाइन में भी होगा। वैटिकन ने कजाकिस्तान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा का कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया है, जिसके अनुसार संत पापा फ्रांसिस 13 सितंबर से 15 सितंबर तक कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा करेंगे। मंगलवार 13 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से कजाकिस्तान के नूर सुल्तान हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। मंगलवार संध्या 6:45 नूर सुल्तान स्थित राष्ट्रपति भवन में संत पापा फ्रांसिस के आदर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। इसी दिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से वे औपचारिक मुलाकात करेंगे और इसके बाद कजाक कॉन्सर्ट हॉल में कजाकिस्तान के वरिष्ठ प्रशासनाधिकारियों, नागर समाज के प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर को संबोधित करेंगे। बुधवार 14 सितंबर को शांति और सुलह प्रासाद में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस का उद्घाटन आयोजित है। 14 सितंबर की संध्या नूर सुल्तान के एक्सपो ग्राउंड में संत पापा भव्य ख्रीस्त्याग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 15 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस कजाकिस्तान स्थित प्रेरितिक राजदूतावास में देश में सेवारत येसु धर्म समाजी पुरोहितों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों और प्रेरित कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देंगे। इसी दिन नूर सुल्तान के शांति और सुलह प्रासाद में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा जाएगा, जिसके बाद संत पापा फ्रांसिस कजाकिस्तान से विदा लेकर पुनः रोम लौटेंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिन्दी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।